નિયમસાર કારણ કાર્ય નિયમ પુસ્તક દુસરી લેક્ચર નંબર 72 ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વર્ચાયાણં નમો લોયે સવસાહૂણં નમિ ઊણજિનં વીરં અનંતનાનંદં સણસહાવં વોચ્છામી નિયમસારં કેવલી સુદ કેવલી ભણિદમ્. આચાર્ય શ્રી કુંકુન ભગવાન દ્વારા રચિત યહ નિયમસાર નામક ગ્રંથ હૈ ઉસ પર પદ્મ પ્રભા મલધારી દેવજી કી જો ટીકા હૈ તાત્પર્ય વૃત્તિ ઓર ઇન પર ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામી કે જો પ્રવચન હુએ હૈ વો કારણ કાર્ય નિયમ પુસ્તક રૂપ સે પ્રસિદ્ધ હૈ ઓર ઉસમે અભી હમ દૂસરી પુસ્તક દેખ રહે હૈ. દૂસરી પુસ્તક કે પૃષ્ઠ સંખ્યા 5 પર હમ આગે 5 વહાં જો નયા પેરેગ્રાફ હૈ ઉસમે હમને કુછ 8-10 પંક્તિયાં પઢી થી. 11વી પંક્તિ ચલ રહી હૈ. યહાં તો યે બાત થી, યે સૌધર્મ ઇન્દ્ર કી બાત ચલ રહી થી કે સૌધર્મ દેવલોક મેં 32 લાખ વિમાન હૈ. એક એક વિમાન મેં બહોત જગે તો અસંખ્ય અસંખ્ય દેવ હૈ ઓર કહીં કહીં સંખ્યાત ભી દેવ હોતે હૈ ઓર એસે વહાં તો જુસકા ઉસકા જો સ્વામી હૈ શક્રેન્દ્ર ઉસકા નામ હૈ કરોડો ઉસકે અપ્સરાએ હૈ ઓર એક ભવતારી હૈ યાની વહાં સે મનુષ્ય હોકર મોક્ષ જાને વાલે હૈ નિયમ સે અને ઉનકી જો એક પટરાની જિસકો પટ દેવી કહેતે હૈ વહાં સે અભી હમ પઢેંગે. એ દેવી ઉપજે ત્યારે તો મિથ્યાત્વ હોય ક્યોંકિ સમ્યક દર્શન હોને કે બાદ સમ્યક્ત્વ કે સાથ કોઈ ભી સ્ત્રી પર્યાય મેં ઉત્પન્ન નહીં હોતા. હા નપુસક ભી નહીં હોતા પરંતુ વો જો નરક મેં પહેલે નરક મેં એક શાયિક કે સાથ જાને વાલે વો નપુસક વેદી હી હોતે હૈ ઉસકો છોડકર અન્યત્ર કહીં નપુસક વેદ મેં ઉત્પન્ન નહીં હોતે. સ્ત્રીનું ઉત્પન્ન થવું મિથ્યાત્વથી જ ઉત્પન્ન થાય છે યાની મિથ્યાત્વ સહિત ઉત્પન્ન હોને વાલે કે વો તો સ્ત્રી પર્યાય મેં જો ઉત્પન્ન હોગા વો મિથ્યાત્વ સહિત હી ઉત્પન્ન હોગા ઉસ પર્યાય મેં બાદ મેં સમ્યક તો હો સકતા હૈ. જ્યાં જ્યાં સ્ત્રી ઉત્પન્ન થઈ એ મિથ્યાત્વ છે માટે સ્ત્રી ઉત્પન્ન સ્ત્રીપણે ઉત્પન્ન થાય છે અને મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં વો સ્ત્રીપણે ઉત્પન્ન હો રહા હૈ. પુરુષ ભી સ્ત્રી હો સકતા હૈ સ્ત્રી ભી સ્ત્રી હો સકતી હૈ યાની કોઈ ભી વેદવાલા સ્ત્રી પર્યાય મેં આ સકતા હૈ પરંતુ ઉસકા અર્થ ક્યા હૈ સ્ત્રી પર્યાય મેં ઉત્પન્ન હુઆ યાની વો મિથ્યાત્વ કે સાથ આયા હુઆ જીવ હૈ યે ઉસકા અર્થ હોતા હૈ. સ્ત્રી કહેને સે વો મનુષ્ય કી સ્ત્રી તિરંચ મેં સ્ત્રી પર્યાય વાલા યા દેવી એ તીનો મેં સ્ત્રી હોગી. નારકી મેં તો સારે નપુસક હોતે વહાં કોઈ સ્ત્રી નહીં હોતી. તો કે તે દેવી ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે તો મિથ્યાત્વ હતું પણ પછી એના સ્વામી ઇન્દ્ર એની સાથે ભગવાનનો જન્મકલ્યાણક ગર્ભકલ્યાણક કેવળ કલ્યાણક દીક્ષા કલ્યાણકમાં સાથે જતા હતા એમાં સાંભળવામાં આવ્યું અને સાંભળીને અંતરમાં ઉતરી ગઈ દેવી કરોડો દેવીમાં એની મુખ્ય અધિપતિ. એ આ જે પર્યાય કહે છે તેની દૃષ્ટિ છોડીને દ્રવ્ય દૃષ્ટિમાં ઉતરી ગઈ. પર્યાયને ઉનકી દેવી કી પર્યાય હૈ યાની વો દેહપને અપને કો પહેલે જો કુછ અનુભવ ચલ રહા તા મિથ્યાત્વ દશામાં અભી મેં જુદા હું ચૈતન્ય તો અપને જો ત્રિકાલી શુદ્ધાત્મા કા અનુભવ કરકે ઉન્હોને સમ્યક તો પ્રાપ્ત કર લિયા હૈ. લોકો કહે છે ને કે પાતાળમાં પાણી ઘણું છે પાતાળમાં બહુ પાણી નથી કેમ કે પાતાળના પાણીમાં નીચે નરકના પાસળા આવે છે. પાસળે મીન્સ કે પટલ પથળી પાથળી. ગમે તેટલા ઊંડા દરિયા સમુદ્ર હોય પણ નીચે 1000 યોજનનું પહેલી નરકના ઉપરના પાસળા છે. देखो ऐसा नहीं एक्चुअली, नहीं नहीं ऐसा है, देखो नरक कहाँ होता है शुरू, तीसरे हजार योजन जाके नहीं होता है। देखो पहली जो पृथ्वी मोटाई है उसकी, तो पहली उसमें तीन भाग है, ऊपर का खर भाग, फिर पंख भाग और अब बहुल भाग। खर भाग कितने योजन का है, उसमें एक एक पृथ्वी 1000 योजन की है, 16000 है, 16000 और 84000, 16000 का खर भाग, 84000 का पंख भाग और अब बहुल भाग वो 80000 का है, 1,80,000 की। परंतु नरक नीचे के अब बहुल में है, उसका अर्थ क्या है, ऊपर 1,00,000 योजन की डिफरेंस है, परंतु समुद्र की गहराई 1,000 योजन ही हो सकती है मैक्सिमम। उसके वो 1,000 योजन के नीचे यानी उस सहित पूरी 1,00,000 योजन का पाताल हो सकता है, बड़ा पाताल 1,00,000 योजन का हो हाइट में, और उसके नीचे, हाँ उसके नीचे नरक का पाथड़ा है, यानी पाताल के नीचे है, ये तो बात सही है। हाँ इसलिए अभी वो तो सबसे बड़े पाताल यानी वो चार ही बड़े हैं ना, चार पाताल सबसे बड़े हैं और हाँ बाकी छोटे छोटे हैं, यानी दिशाओं के है, फिर विदिशाओं के है मध्यम, और फिर वो जघन्य है, वो तो छोटे छोटे हैं, वो 1,000 योजन के होते हैं, यानी वो 1,00,000 योजन ऊंडाई वाले चार पाताल है, 10,000 योजन ऊंडाई वाले और चार विदिशाओं में है, और बाकी जो सारे पाताल है वो 1,000 योजन ऊंडाई वाले हैं, परंतु 1,000 के नीचे नरक नहीं है, नरक के पातरे 1,00,000 योजन नीचे ही है, फिर भी यानी उससे डीप नहीं है, बस इतना कहना है, अभी इसमें यथायोग्य समझ लेना। ये बराबर है कि पाताल ना पानी में नीचे नरक ना पाछड़ा आवे छे, क्योंकि उसका जो सीमन तक बिल है, तो यहाँ जो पाताल है वो कितने दूरी पर है, जम्बूद्वीप है, उसके बाद लवण समुद्र है, तो लवण समुद्र के सेंटर की लाइन करो, यानी जम्बूद्वीप का सेंटर से एक बाजू 50,000 और उसके आगे 1,00,000, क्योंकि 2,00,000 का सेंटर लेना है तो 1,00,000, यानी इतने सेंटर से इतने डिस्टेंस पर जाकर पाताल का मुंह है, और वहां चार बड़े बड़े पाताल है, और सीमन तक बिल कितना लंबा है, सीमन तक बिल कितना बड़ा है, 45,00,000 योजन, जितना ढाई द्वीप इतना है, यानी पूरा सीमन तक बिल यानी ढाई द्वीप तक है, और वो पाताल सेंटर से 1,50,000 योजन पर है, और वो जो 1,00,000 योजन की गहराई, वो पाताल की जो नींव है वो सीमन तक बिल के ऊपर है, यानी यह 1,000 के बदले 1,00,000 कहना चाहिए, 1,00,000 योजन के नीचे वहां नरक के पाथड़े, समुद्र इतना गहरा नहीं है पर पाताल इतना गहरा है। देखो नहीं नहीं पाताल में वो पानी है, पानी और वायु है, वहां देव देवियां नहीं है, पाताल में देव देवियां नहीं है, वहां तो पाताल के बाजू में तो वो वहां सब भवनवासी वगैरह के भवन होंगे ना, पाताल के अंदर कोई नहीं रहेंगे वहां पर। देखो फिर से पढ़ते हैं, लोगों कहे छे ना पाताल मां पानी घणु छे, पाताल मां बहु पानी नथी, केम के पाताल ना पानी मां नीचे नरक ना पाछड़ा आवे छे, हमने भी देखा वहां पाताल में ऊपर के वंथड़ में पानी है, बीच में पानी और वायु दोनों है, और नीचे तो वायु है, उल्टा है, नीचे वायु और ऊपर पानी, और वो पानी और वायु नीचे ऊपर होता रहता है, तो हाँ पूर्णिमा के दिन पूरा ऊपर जाता है, हाँ और अमावस के दिन तक नीचे नीचे बैठता है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे जाता है, यानी वो वायु ऊपर ऊपर आता है नीचे नीचे जाता है, वैसे पानी भी बाहर फेंका जाता है, और जिसको हम कहते ना वो तो भरती, यानी क्या कहते आप गुजराती में, भरती कहते ना, हाँ जिसको मराठी में भरती ओहोटी कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हिंदी में, हाँ तो कहते पाताल मां बहु पानी नथी, केम के पाताल ना पानी मां नीचे नरक ना पाछड़ा आवे छे, ये बरोबर है, गमे तेटला ऊंडा दरिया समुद्र होए, तो तो समुद्र की ऊंडाई तो 1000 योजन है मैक्सिमम, पर नीचे 1000 योजन नू एक लाख योजन नू पहली नरकना उपरना पासड़ा छे, लाख योजन चाहिए, परंतु समुद्र की गहराई 1000 योजन से ज्यादा नहीं होगी। हाँ बोलो। करेक्शन ये यानी जानना, अभी हम सेकंड लाइन में ना, गमे तेटला ऊंडा दरिया समुद्र हो, तो गमे तेटला ऊंडा यानी समुद्र की गहराई तो 1000 योजन ही होती है। गमे तेटला ऊंडा वहां 1000 योजन डालो आप, समझ नहीं, नहीं समुद्र की ऊंडाई 1000 योजन ही होती, ज्यादा नहीं, यानी वो गमे तेटला ऊंडा यहाँ एक साइन करके 1000 योजन कर। पर अभी आगे लिखा ना, पन नीचे अभी पाताल ना, नीचे पाताल, पाताल 1 लाख योजन की ऊंडाई वाला है, तो नीचे 1 लाख करो, 1 लाख योजन नू पहली नरकना ऊपरना पासड़ा छे, क्योंकि 1000 योजन नीचे तो वो हम देखे ना वज्रा धर्म वज्रा वगैरह वो पृथ्वियां होती है, हाँ उसकी बात है, वहां पर 16 अलग अलग पृथ्वियां है, समुद्र की गहराई तो 1000 योजन ही है, नीचे 1 लाख योजन पहली नरकना ऊपरना पासड़ा छे, माटे पाताल मा पानी जाजू नथी, अथवा हाँ जाजो ने ज्यादा, अथवा 14 ब्रह्मांड में पानी नु क्षेत्र थोड़ू छे अने जमन जमीन नु क्षेत्र वधारे छे, क्योंकि नहीं क्योंकि जमीन के आधार से पानी है ना, जमीन के ऊपर पानी है ना, अभी ये जो पृथ्वी की मोटाई किसी ने देखो, नहीं नहीं उसमें पृथ्वी है ना पूरी, ऐसा आप द्वीप और समुद्र देखते हैं तो अंतिम समुद्र जितना है उतना ही अंदर के सारे द्वीप और समुद्र मिलके होते हैं, उस तरह से आपको देखना है, परंतु उसकी ऊंडाई देखो।
हाँ उनका ऐसा कहना हाँ, है कि पानी का प्रोपोर्शन
मध्यलोक में, मध्यलोक
प्रोपोर्शन
मध्यलोक में देखेंगे तो बरोबर, मध्यलोक में अगर देखते असंख्या द्वीप समुद्रों में पानी के एरिया ज्यादा है, परंतु यहाँ
हमारा ये कहना है कि पानी के नीचे तो
जमीन है,
है ना,
ऐसा आप ऊपर से सरफेस वाइज देखो तो पानी का क्षेत्र सरफेस ज्यादा है, हाँ बराबर है, परंतु अभी यहाँ अलग बात, अलग अपेक्षा से बात कर रहे हैं, अब यहाँ पूरे लोक की बात कर रहे हैं, अब वहाँ पृथ्वी की मोटाई भी लेना है, समुद्र की गहराई केवल सेंटर में 1000 योजन है और साइड में ऐसी टेपरिंग होगी हर एक समुद्र की, ख्याल में नहीं, वो स्वयंभू रमण समुद्र इतना 1000 योजन गहराई वाला है, हाँ तो दोनों ही द्वीपों की ओर वो तो जैसे किनारे पर वो जैसे कैसे आता है कम हो जाए, ऐसे जैसे ऐसा अपना घमेला जैसा कोई बर्तन है तो बाजू में कैसा कम होता है ना उसकी थिकनेस, और नीचे गहराई ज्यादा होगी, हर एक समुद्र में ऐसा ही, लवण समुद्र में भी ऐसा है, क्योंकि सेंटर में उसका 1000 है और बाजू में तो बिल्कुल जैसे हमारे पैर भी नहीं गीले हो गए इतना होगा, परंतु वो कितना जाके, लवण समुद्र जो 2 लाख है तो उसके सेंटर के 10000 योजन में ही डेप्थ उसके 1000 योजन है और बाकी जो है वो किनारे है, हाँ वो इसे पूरा ही यहाँ 95,000 यहाँ 95,000 वो कर्वेचर ले लेना उसका, यानी ऐसा क्षेत्र निकालेंगे तो सरफेस वाइज देखो तो एक द्वीप एक समुद्र वो तो उससे दुगना दुगना दुगना, तो उसमें समुद्र की एरिया ज्यादा हो जाएगी, परंतु उसका क्षेत्र कहने से पूरा, हाँ उसका क्षेत्रफल जिसको हम कहेंगे या घनफल जिसको कहेंगे वो पानी का कम होगा, पृथ्वियों की मोटाई बहुत है यहाँ की ना, जमीन नु क्षेत्र वधारे चाहिए, उसके क्षेत्र निकाला पूरा क्षेत्रफल। आ तो एक वक्त अंदर घना विचार आवता आवता थयूं के आखा ब्रह्मांड नो तोल शू हशे, आखा ब्रह्मांड ना 343 राजू ये समझ रहे हैं, वो तो कैसे, यानी अगर उसको इक्वलाइज करेंगे, है तो 14 राजू हाइट और दक्षिणोत्तर 7 राजू, पर पूर्व पश्चिम 1 राजू, 5 राजू, फिर 1 राजू, फिर 7 राजू, उसको अगर हम निकालेंगे तो 343 घन राजू आते हैं। ये घन राजू करना, आखा ब्रह्मांड ना 343 घन राजू, एनो तोल शू हसे, तोल ए तो भगवान जाने क्या समय उसका वजन कितना होगा कहते हैं बाकी एनु तोल नाम ज्ञान ना प्रमाण मा एनु माप आवी जाए छे, हम जानू काई भगवान जाने, भगवान के ज्ञान में तो होगा। तो उसमें वजन कौन से द्रव्य का होगा बेन, बोलो। लोक में यहाँ क्या 343 घने राजू है, लोक है, लोक में 6 द्रव्य है, तो कहते उसका तोल यानी माप यानी वजन कितना होगा क्या पता, भगवान के तो पता है, तो वजन उसमें से 6 द्रव्यों में से किसको वजन होगा, ये मेरा प्रश्न है। पुद्गल को ख्याल में आते हमें हल्का भारी स्कंधों की पर्याय है ना, परमाणु को भी नहीं है, परमाणु को भी हल्का भारी कुछ नहीं है, पर उसके जो स्कंद है उनमें हल्का भारी होगा वो, तो उसमें जो वजन है वो पुद्गल का है। तो कहते तोल नाम ज्ञान ना प्रमाण में इनु माप आवी जाए, यानी ज्ञान जानता है कि ये त्रिलोक की रचना क्या है, कहाँ क्या बातें होती है, समझानो का है। मारे तो बीजू कहूं छे ए पाताल ने तो हद छे, यहाँ क्या कहना चाहते है, पाताल को तो हद है उसके, जो कोई ये जो बड़े पाताल है ना वही लाख योजन ऊंडाई वाले और लाख योजन सेंटर में डायमीटर वाले है, ये 4 मुख्य पाताल यानी मेन पाताल, फिर जो विदिशाओं में 4 है उसके तो 10,000 योजन वाले ही हाइट वाले हैं पातालों की, वो भूगोल पुस्तक निकालना पाताल में। और जो बीच में नहीं, टोटल 1,008 पाताल है, तो बीच वाले जो 1,000 जो है इनके बीच 25-25 सब जगह हो गए, तो 250-250 25 नहीं, एक मुख्य पाताल और एक उप पाताल उसके बीच में 250-250 ऐसे 8 जगह 250 हो जाए, हाँ 4 जगह, तो उसके कितने हो गए 1,000 छोटे पाताल हो गए, टोटल पाताल 1,008 है, तो उन छोटे पातालों की हाइट 1,000 योजन है, जितनी समुद्र की हाइट हो सकती है उतनी, 1,008 टोटल पाताल है छोटे, 1,000 चार दिशा वाले और 4 विदिशा वाले, विदिशा भी है ना, दिशा वालों के 1,00,000 योजन वाले ऊंडाई वाले हैं और विदिशा वाले 10,000 वाले हैं,
चार दिशा के 1,00,000 योजन, चार विदिशा के 10,000 योजन,
हाँ,
और वो छोटे पाताल
1,000 योजन वाले, तो जो लाख योजन वाले हैं वो सीमंत तक पहला नरक का पहला सेंटर का जो है बिल उसके ऊपर ये टच करते हैं, और बीच माल बीच में वो 500 योजन वाली तो भित्तियां है वज्र की, उसको सेपरेट करने वाली, वही तो 500 योजन की, उसके जो सेंट देखो ऊपर पाताल और नीचे नरक का बिल, बीच में वो 500 योजन वाली जो उसके पाताल की जो भित्तियां होती है ना सभी ओर से 500 योजन थिकनेस वाली होती है, ये हर एक पाताल के अलग अलग डायमेंशन है उसके अलग अलग ये होगी, नीचे वायु बीच में जल और वायु और ऊपर जल, तो जब वायु ऊपर आता है तो जल बाहर फेंका जाता है, तो हमारे यहाँ वो ज्वार जिसको कहें सुनामी हर महीने में आनी पड़ेगी फिर सुनामी, ये जो भर्ती जिसको कहेंगे ना, ये हाँ मैंने बोला वो सुनामी में गया कहाँ, सब जगह बाहर आया तो आया कहाँ से, ये मैंने पूछा था पहले आपको है ना, हाँ। क्योंकि ये पानी आया कहाँ से इतना, क्योंकि सभी दिशाओं में वो बढ़ गया ना, तो आया कहाँ से हमने पूछा था आपको। और वो पाताल तो जहाँ जाके 95,000 योजन अंदर जाके आता है। हाँ। अब देखो ये यहाँ तो यही कहना चाहते हैं, जैसे पाताल ऐसे ये अंदर अपने डीप डाउन अंदर अपने गहराई से अपने में उतर जाओ ऐसा कहते हैं, ये कहना चाहते हैं। ऊपर जाए ये ऊपर आई थी बात, पाताल की बात आई थी, ये द्रव्य दृष्टि में उतरी गई वैसी बात आई थी ना, पहले पाताल का नाम लिया था उन्होंने, इसलिए यहाँ पाताल का स्वरूप बता रहे। देखो अभी आगे अने आ भगवान छे, देखो पाताल नी तो हद छे, अने आ भगवान छे एनी पर्याय नी पाछळ पाताल भरेलू छे जीनी वात छे, अने पूरा द्रव्य स्वभाव है जिसको कोई हद नहीं है, ये कहना चाहते। पाताल का तो हद है मर्यादा, यहाँ कहना इतना ही है, पाताल को भी मर्यादा है, द्रव्य स्वभाव में कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि स्वभाव उसी को कहते हैं जिसमें कोई मर्यादा नहीं होती, जो किसी ने बनाया नहीं होता है, जो अनादि अनंत होता है, एक सदृश एक समान होता है, उसमें कोई वधघट नहीं होती। ये स्वभाव की बार 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 उसको याद करने जैसी है, वो परिपूर्ण होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती, और वो सदा मौजूद है। अभी भी हम स्वभाव, क्योंकि पर्याय तो एक समय वाली है, बहुत अल्प है, पूरा द्रव्य को देखो तो स्वभाव ही भरा पूरा है, और पर्याय तो नहीं के बराबर है उसके सामने, पर हमारा सारा लक्ष्य उस पर्याय जितना हमको मान लिया हमने, और पूरा जो स्वभाव भाव पड़ा है उसका लक्ष्य ही नहीं किया है। इसलिए पाताल की उपमा दी कि पाताल को तो मर्यादा है, पर स्वभाव को पर्याय के पीछे, क्योंकि पर्याय तो द्रव्य में से उत्पन्न हुई है, उसके पीछे पूरा द्रव्य स्वभाव है। यानी पर्याय कैसी है वो देखने की भी जरूरत नहीं हमकी, वो तो अधूरी है, विभाव रूप है, परंतु द्रव्य स्वभाव तो उसके पीछे परिपूर्ण है। हम अभी मनुष्य है, कभी पहले निगोद में थे तभी भी पूरा स्वभाव जैसा का वैसा था, अब भी वैसा है, तो केवल ज्ञान होने पर वो भी वैसा ही रहने वाला है। सिद्ध में हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद सिद्ध, उसमें कुछ कमी नहीं होगी स्वभाव में से, अभी इतना सब पर्याय में प्रकट हुआ तो स्वभाव में कुछ कम हो गया, कभी नहीं होगा, उसको स्वभाव कहते हैं। तारी प्रभुतानो पार नथी प्रभु, ये अपने प्रभुता का पहचान ही नहीं है, और अपने को पामर हीन दीन मानते हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मुझे कुछ नहीं याद रहता है, मैं इतना ही जानती हूँ, ये हमने इतना अपने को समझ के रखा है, अपना मैंपना किसमें स्थापित करना है, ये स्वभाव भाव में। तो कहते तारी प्रभुतानो पार नथी, पार नथी यानी वो जिसको अपार है, जिसको अमर्यादित है, उसमें कोई मर्यादा नहीं है, एवी वात छे पना बाहरनी चीजों ना प्रपंच मा, प्रपंच समझते है ना, ये प्रपंच यानी सब माथा पच्ची, हाँ खटा टोप सारा, प्रपंच यानी वो हमारा कुटुंब बाल बच्चे, वो प्रपंच नहीं, प्रपंच यानी हम जो माथा फोड़ी कर रहे हैं वो सारा प्रपंच। बाहर ना प्रपंच मा सुख बुद्धि थी, सुख बुद्धि ने उसमें सुख है ऐसी मिथ्या मान्यता, उसको सुख बुद्धि कह रहे। किसमें से सुख माना है हमने, अच्छे घर में, कपड़ों में, गहनों में, और सब संयोगों में, गुरुदेव की भाषा में वो धूल पैसा पानी इज्जत भी ले लिया उसके अंदर। हाँ क्या तो कहते बाहर ना प्रपंच मा सुख बुद्धि थी, यानी इसमें मेरा सुख है ऐसे उल्टी मान्यता, किसने बनाई उल्टी मान्यता, बाहर की चीजों ने ये हमारी कल्पना है, खोटी कल्पना। तारी स्वयं नी सुख बुद्धि उत्पन्न थती नहीं, स्वयं नी सुख बुद्धि ने मुझे में सुख है ऐसी मान्यता उत्पन्न नहीं हो रही, बाहर के चीजों से सुख मिलता है ऐसी मान्यता के कारण अपने में जो सुख है उसका उसकी मान्यता ही नहीं होती है, उसका भान ही नहीं हो रहा है। बाह्य आ प्रपंच, अभी कौन सा प्रपंच, देखो शरीर, वाणी, देखाव, पैसा, आबरू, मकान, ये बाह्य बधा प्रपंच। ये देखाव में देखो, अभी आजकल देखाव के लिए सब ज्यादा पैसा खर्चा होता है ना, दिखावा, ये जो ब्यूटी पार्लर ज्यादा चलते हैं, डॉक्टरों से भी नहीं समझे और वो ब्यूटी पार्लर में नहीं जाएंगे, महीने में कितने बार जाते हैं मुझे पता नहीं, मैं कभी गई नहीं आज तक। एक बार जाना पड़ता है घर में ब्यूटी बेटी का है, मगर हमको कभी वहां पे जाते वो पीछे पड़ते हैं, हमको नहीं चाहिए, क्या करना तुम्हारी उधर, टाइम पास नहीं चाहिए हमको। तो कहते हैं कि ये देखा मैं पैसा आबरू, और आबरू उसमें समझिए पैसे में, लोग हमको क्या समझेंगे वो हमारी आबरू। अरे हमने अपने को नहीं समझा, पर लोग हमको क्या समझेंगे, किसको, ये जो देह है ये बाह्य बधा प्रपंच अने सुखबुद्धि ना कारणे भगवान अंदर शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद संपन्न छे, एनी सुखबुद्धि थती नथी। जो स्वयं सुख स्वरूप है, सुख से लबालब भरा है, तो मुझे तो सुख उसमें से ही मिलने वाला है, परंतु खोटी मान्यता क्या है, इन बाह्य चीजों से मुझे सुख मिलेगा, इसलिए उसी के पीछे, उसी को इकट्ठा करो, उसी को संग्रह करो, उसके लिए पैसा कमाओ, उसी में जीव लगा रहता है। समझानो काय, अहीं तो बीजू केहूं छे, ए पातानी पाताना पानीनी तो हद छे, आ पाताल ऊपर आ पर्याय छे, पाताल में द्रव्य स्वभाव को यहाँ गहराई है ना, इसलिए पाताल कहा, और पर्याय ऊपर ऊपर है, एने एक समय मात्र है, एने अहीं परद्रव्य कहूं, यह है ना, वो सब औक्षमिक भाव इच्छा औक्षमिक भाव सबको यहाँ पर्याय रूप को परद्रव्य कहा, ए परद्रव्य नी नीचे आँखों पाताल छे, एने अपना आखा द्रव्य स्वभाव है, आ शुद्ध भाव जिसको हम त्रिकाली भाव कहा, आ सात तत्व छे शुद्ध भाव नथी। देखो संवर निजरा मोक्ष तो ये तो शुद्ध पर्याय है, परंतु वो भी शुद्ध भाव है, त्रिकाली में नहीं लिया उसको, उसको अलग स्थान दिया। संवर निजरा मोक्ष पण शुद्ध भाव नथी, ये पर्याय नो शुद्ध भाव छे, ख्याल में न, पर्याय का वो क्षायिक भाव होगा या जो औक्षमिक भाव है, समय दर्शन ज्ञान चारित्र है, संवर निजरा है, और मोक्ष जो है वो पर्याय में उसको शुद्ध कहेंगे, शुद्ध पर्याय स्वभाव पर्याय कहेंगे, परंतु वो शुद्ध भाव है नहीं, त्रिकाली भाव वो नहीं है, स्वभाव भाव, स्वभाव भाव परिणामिक भाव। हाँ, ये शुद्ध भाव नहीं पर्याय, देखो ये शुद्ध भाव अधिकार है ना, पहले ये चर्चा हुई थी, पर्याय में जो शुभ भाव अशुभ भाव और शुद्ध भाव है उसकी ये चर्चा नहीं है, यहाँ स्वभाव भाव को शुद्ध भाव कह रहे हैं। आप नहीं थे एक दिन क्या बीच में, ये चर्चा हुई थी अपने यहाँ पर। हाँ तो शुद्ध भाव ने पर्याय ने तो ही परद्रव्य कहूं, शुद्ध भाव के पर्याय ने कौन सी, संवर निजरा मोक्ष, उसको भी परद्रव्य में रखा, क्योंकि सातों ही जो तत्व बताए हैं ये तो पर्याय रूप तत्व बताए ना, जीवादि बहिर तत्व कहा था। आखिरी बात छे भगवान, अरे क्या रहू क्या जाऊं, अनादि अनंत भगवान आत्मा तो कहे छे के प्रभु, ये भगवान आत्मा जिसको यहाँ शुद्ध भाव कह रहे वो कैसा अनादि अनंत त्रिकाल है, तारी चीज एवी छे कि जेमा संवर निर्जरा ने मोक्ष पण अमे तो परद्रव्य कहिए छे, ये अध्यात्म की परम अध्यात्म की अपेक्षा है। क्यों परद्रव्य कहा, क्योंकि मैं कैसा हूँ, अनादि अनंत हूँ, और संवर निर्जरा अनादि से नहीं थी, बाद में प्रकटी, उसका भी अभाव होने वाला है फिर मोक्ष प्रकट होगा, तो जो अनादि से नहीं है, मैं तो अनादि अनंत हूँ, इसलिए उस रूप मैं नहीं हूँ, इस तरह से कह रहे हैं। अपेक्षा समझना बराबर हो, क्या कहते देखो, केम के एना आश्रय थी समय दर्शन नहीं था, तो पर्याय के आश्रय से उसको नहीं, क्योंकि जो त्रिकाली स्वभाव भाव है उसका लक्ष्य करने से पर्याय में संवर निजरा मोक्ष उत्पन्न होती है, परंतु वो सम्यक दर्शन का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, ख्याल में आते हैं ना, वो हमारा जो स्वभाव भाव है कायम रहने वाला उसकी महत्ता आएगी तो, और उसका लक्ष्य करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। अभी आजकल क्या हमको सम्यक दर्शन की इतनी महिमा आती है, इतनी महिमा द्रव्य स्वभाव की आ रही है क्या, अरे इसको सम्यक दर्शन है, उसको देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है, वो गोरा है कि काला है कि हाइट वाला है कि होगा, तो वह समय दृष्टि के उपदेश से कुछ फायदा हो सकता है, परंतु वो समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कैसा नक्की करेगा, इतने लोगों की भीड़ लगी इसलिए वो समय दृष्टि, ऐसी कोई बात नहीं होती है। अब उसके लिए शास्त्र का अभ्यास भी चाहिए। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं कि उस समय दर्शन के पर्याय के आश्रय से भी समय दर्शन नहीं होगा, उसके लक्ष्य से भी वो पर्याय नहीं प्रकट होने वाली है। उत्पन्न थयु समय दर्शन, पण समय दर्शन ने पर्याय ना आश्रय थी केवल ज्ञान नी पर्याय उत्पन्न नहीं थती। ख्याल में था इसका अर्थ हमें, क्योंकि पर्याय के आश्रय से नहीं, ये जो सारी स्वभाव रूप पर्याय उत्पन्न होती है वो लक्ष्य त्रिकालिका करने से उत्पन्न होती है, और त्रिकालिका लक्ष्य और स्थिरता बढ़ते बढ़ते ऊपर के गुणस्थान प्राप्त हो गए। बाह्य से कोई वो व्यवहार करने से होता है, प्रकट होता है, बाह्य चीजें व्रत आदि करने से गुणस्थान ऊपर बढ़ता है, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। बिल्कुल है। होगा तो यानी वो तो पूर्व पर्याय है, यानी ये तो सत्य परिस्थिति है,
ये मानने की बात नहीं है, ये सत्य बात है कि जब तक आत्मानुभव नहीं होता है, सम्यक दर्शन नहीं होता है,
यहाँ क्या लिखा,
सम्यक ज्ञान नहीं होता है, तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा।
देखो यहाँ क्या लिखा, फिर पढ़ो आप। सम्यक दर्शन ने पर्याय ना आश्रय थी, आश्रय थी नहीं उसका लक्ष्य करने से, समझ में आते हैं बात, यानी वो पूर्व पर्याय है और ये बाद में केवल ज्ञान होने वाला है, पर त्रिकाली ध्रुव का आश्रय। देखो देखो ये जीव को पुरुषार्थ करना चाहिए कहते हैं, पुरुषार्थ करना है ने क्या, अपने त्रिकाली स्वभाव का निर्णय करके ज्ञान उसी को जानता रहे, वही पुरुषार्थ है, और उसी में समय दर्शन होगा, उसी पुरुषार्थ से मुनि अवस्था होगी, उसी पुरुषार्थ से केवल ज्ञान होगा। यानी सर्वत्र पुरुषार्थ एक ही है, अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय करके, आश्रय किसका, त्रिकाली का आश्रय करना नहीं, उसका लक्ष्य करके उसके सन्मुख होकर स्थिर हो जाना, उसी को जानते रहना, उसको कहेंगे आश्रय। आश्रय करने वाली तो पर्याय है, पण पर्याय ने पर्याय का आश्रय नहीं लिया, पर्याय ने त्रिकाली का आश्रय किया, यानी अपने स्वभाव का आश्रय किया। यानी समय दर्शन की पर्याय भी स्वभाव के आश्रय से हुई, और केवल ज्ञान की पर्याय भी स्वभाव के आश्रय से, ये कहना चाहते हैं। देखो संवरनी पर्याय शुद्धि छे, अने निर्जरानी पर्याय शुद्धि नी वृद्धि छे। देखो क्या कहते हैं, ये संवर हुआ है ने क्या, शुद्धता है ने वितरागता, शुद्धि जो है उत्पन्न हुई, क्योंकि अभी पूर्ण शुद्धि नहीं हो गई, पूर्ण शुद्धि हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा, और निर्जरा किसको कहना, शुद्धि की वृद्धि होना, उसको निर्जरा कहेंगे। ये जीव की तरफ से है, कर्मों की तरफ से कहना है तो कुछ कर्मों का आना जो कुछ रुक जाता है तो उसको संवर कहेंगे, और जो ऑलरेडी बंधे हुए कर्म अधिक मात्रा में जड़ जाते हैं उसको निर्जरा कहते हैं। वो तो द्रव्य निर्जरा, द्रव्य संवर कहेंगे, द्रव्य ने पुद्गल का यानी कर्मों का, या हमको जीव के भावों की बात करनी है। तो जीव में क्या हुआ, तो जीव में शुद्धि की उत्पत्ति हुई, वितरागता नहीं थी अभी तक, अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, स्वभाव रूप पर्याय उत्पन्न हुई तो उसको कहेंगे शुद्धि की उत्पत्ति हुई। हाँ, आपका प्रश्न है क्या पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा होती है? हाँ, दोनों की निर्जरा होती है, क्योंकि एक को रखे क्या फायदा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप ऐसा पूछना। आप हम कहते पाप जाएगा, पाप जाएगा तो ठीक है, पुण्य जाएगा तो क्या होगा, पर निर्जरा होती है ना, उदय रूप होकर निर्जरा होती है। हाँ, और पाप की निर्जरा होती है ना, पाप का अनुभाग कम होकर निर्जरा होती है, वो तो उसके साथ साथ वो भी हो जाता है। और ये जो मान्यता है ना कि पाप निकल जाए तो अच्छा है, पुण्य निकल जाए तो क्या होगा हमारा, ये इसको कहेंगे ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल, यानी जीव की विपरीत मान्यता।
ऐसा है कि आपको मोक्ष चाहिए और मोक्ष यानी सारे कर्म झड़ जाने चाहिए, लेकिन पुण्य परिणाम, पुण्य कर्म रहने चाहिए, ऐसा मोक्ष मिलेगा क्या? कोई बात नहीं, इसलिए तो हमने कहा कि 15 दिन आना करके, हमने पहले ही रिक्वेस्ट किया आपको।
हाँ, उसका उदय होकर ही निर्जरा होती है ना, उदय में आता
हम
है।
मुक्त होना नहीं चाहते, हम संसार में ही रहना चाहते हैं, ये शुभ भाव से हमको अनुकूलता मिलेगी।
वो
शुभ कर्मों से हमें सब फायदा होगा, ऐसा हम अभी मानते हैं। लेकिन बात तो ऐसे, हमारा अल्टीमेटम एम यानी लास्ट गोल क्या है, तो मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्तता। मुक्तता यानी क्या? दो प्रकार से, अपने स्वरूप में कायम का स्थिर हो जाना या कर्मों का सब झड़ जाना। तो हम कर्मों को झड़ने में तो पाप को हटाना चाहते और पुण्य को रखना चाहते, तो मुक्ति मिलेगी कि नहीं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ सारी बातों का उकेल है, प्रश्नों का आपको आंसर मिलेगा, लेकिन वो समझने जितनी आपकी तैयारी होनी चाहिए, और उसके लिए तो थोड़ा थोड़ा करके आपको समझना है। आपके मन में कुछ भी प्रश्न हो तो पूछना, घबराना नहीं। आप ये बंद हो गए प्रश्न पूछने का, नहीं तो पहले तो गोली मार दीजिए।
देखो देखो क्या कहना चाहते हैं, आपने वो लेटर्स वो सब पढ़े होंगे जैन तत्व परिचय में, वो लास्ट लास्ट में इन सात तत्वों संबंधी जीव की विपरीत मान्यता। अभी वो तो केवल पढ़ने में और सुनकर समझने में अंतर है, वो बात मैं समझती हूँ। इसमें क्या है, जीव की अनादि से ये मान्यता है, वो क्या चाहता है। ये छहडाला नाम के काव्य है, शास्त्रीय वो, यानी छोटे काव्य में बहुत बड़ा रहस्य भरा है। उसमें क्या लिखा है, शुभ शुभ और अशुभ के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। क्या करता है, शुभ के फल में रति करता है, अशुभ के फल में अरति यानी द्वेष करता है, और क्या करता है, निज पद विसार, अपने स्वभाव को भूलकर। यानी वो शुभ के फल चाहता है, अशुभ के फल नहीं चाहता। यही बात अभी हुई ना कि पाप कर्म निर्जरा हो जाए तो अच्छा है, पुण्य कर्म तो रहना चाहिए। ये सभी जीवों के अनादि से ऐसी मान्यता है, क्योंकि वो संयोग, उसने अपने को शरीर रूप समझा है, तो जो संयोग अनुकूल संयोग उसको वो भी अनुकूलता उसने मान के रखी, कि उसके कल्पनाएं हैं कि ऐसे ऐसे हो गए तो ये अनुकूलता, ये मेरे लिए अच्छा है, तो उसके लिए उसको राग होता है। और जो उसको प्रतिकूल मानता है, मैं नहीं ये शरीर, इसके लिए जो प्रतिकूल है उसके लिए उसको नफरत हो जाती है। परंतु यहाँ तो समझना, ये तो शुभ और अशुभ के, ये शुभ अशुभ भाव करता रहता है, और शुभ अशुभ के फलों में इष्ट अनिष्ट मानकर फिर और नए राग द्वेष करके नए पुण्य पाप करता रहता है। ये अनादि से चल रहा है, आज की बात नहीं है। तो हमें तो ये पुण्य से भी और पाप से भी, उसके फल से भी मैं जुदा हूँ, ये नक्की करना है। हाँ देखो अभी फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ना सात तत्व संबंधी जीव की विपरीत मान्यता, ये अनादि से चल रही है, वो किसी ने सिखाई नहीं उसको। परंतु सही मान्यता होने के लिए हमें इस उपदेश की जरूरत है। जरूरत है ने वो तो यथा योग्य अपने स्वयं की योग्यता से समझेंगे वो सब बातें, उसके पीछे वो सारा रहस्य है। क्या कहते हैं देखो, सुख ये बताए ना, नीचे दूसरा पैराग्राफ चल रहा था ना, चौथी लाइन, संवरणीय पर्याय शुद्धि चे, निर्जरानी पर्याय शुद्धि नी वृद्धि चे, ये अपनी बात हुई थी। अने मोक्षनी पर्याय शुद्धि नी पूर्णता चे, पने त्रणे पर्याय पर्याय थी उत्पन्न नथी थती। कल हमने पूछा था बंगड़ी में से हार होगा कि सोने में से होगा, हाँ तो ये पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, द्रव्य में से होती है। सेठ आ कदी सांभ्यू ज नथी, बात बराबर है ना, ये हमने कभी सुना ही नहीं है। बहु आकरी वात भगवान, आहा बाहर नी प्रवृत्ति मा आम करियो आम करियो, गजरथ काढ़ो रथयात्रा काढ़ी, भगवान नी प्रतिमा हजारों स्थापित, तो जाने थई गयो धर्म। शुभ भाव थाय छे ज्यां सुधी वितरागता न थाय त्यां सुधी समकीति ने पण यानी समय दृष्टि को भी, अशुभ थी बचवा शुभ भाव थाय छे पण ये बंधनु कारण छे। करने जैसा नहीं मानता है, और संयोग अच्छे मिले इसलिए ये करूं, ऐसा भी उसके बिल्कुल मान्यता नहीं है, क्योंकि संयोगों से मैं जुदा हूँ ये बिल्कुल अनुभव से जान लिया है उसने, और संयोगों में से सुख मिलता ये बुद्धि उसकी मान्यता ही नहीं रही। तो संयोग अच्छे मिले इसलिए वो शुभ भाव नहीं कर रहा है, परंतु उसको अशुभ की रुचि ही नहीं रही है। जैसे पांचों इंद्रियों के भोगों में उसके कुछ सुख बुद्धि नहीं रही है, तो उसमें क्यों जाएगा अशुभ से बचने के लिए, एक कहने के लिए बचने के लिए कहिए, पर उसके वो भाव ही नहीं आ रहे, उसके शुभ भाव ही आ रहे हैं। जब तक अंतरंग में स्थिरता नहीं होती और बाहर आ जाता है उस शुभ, जिसको हम शुद्धोपयोग से, तो उसको शुभ भाव ही आते हैं, अशुभ आते ही नहीं है। जैसे हम तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं करते थे तो क्या क्या, अरे इधर जाओ उधर जाओ, ये देखो उधर जाओ, ये यहाँ घूमने चले जाओ, यहाँ पिक्चर देखो, यहाँ सिनेमा देखो, ये शॉपिंग करो, इसके भाव आते थे। अभी कहीं जाते तो वो तो कुछ देखने के भी भाव नहीं आते, क्यों नहीं आते? हम अमेरिका जाते थे हर साल, लोग कहते नहीं यहाँ इतने देखने लायक है, अमेरिका तो स्वर्ग है, लोग यहाँ आते हैं इंडिया से खास देखने के लिए, हम चलो हम हमारे एरिया में ही आपको दिखाते। हमने बोला हमको कुछ नहीं देखना है, हम जो दिखाने वाले आए हैं वो पहले देख लो, क्योंकि 6-6 घंटे वहाँ पर भी हमारे प्रवचन चलते थे और हम क्या अलग से दिन निकाल कर नहीं जाते थे कि थोड़े 2 दिन घूमने के लिए रखो और बाकी प्रवचन के लिए, हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं। ये इंटरेस्ट अपने आप खलास हो जाता है, उसके लिए कुछ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। लोगों को लगता है नहीं आप जबरदस्ती ऐसे करते हो, कहीं जाते नहीं आते नहीं, अरे उसमें कहाँ जाने आने में रस नहीं रहा। जो सोशल गैदरिंग होते हैं वहाँ क्या जाना, जाते तो क्या उनके साथ क्या बातें करनी, वहाँ तो चुप्पे हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, अपने को कुछ सोचता नहीं है क्या बोले इनके साथ। यहाँ लिखा है ना अशुभ से बचने के लिए संकीति को भी शुभ भाव आता है, और परंतु वो बंध का कारण है। उसको तो ऐसा लगता है मैं कहाँ फंस गए हैं शुभ में भी, क्योंकि इससे बंध तो होने ही वाला है और बंध हुआ तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। हम देखते हैं मुनिराज वो जो ऊपर के 33-33 सागर के आयु वाले हैं उनको पता नहीं है, तो इतने वो अंतरंग में स्थिरता भी है और उतने उनके शुभ भाव भी उच्च जाति के हैं, उच्च प्रकार के हैं। और अभी जो यहाँ 6-7 गुणस्थान में थे या कोई उपशम श्रेणी भी चढ़ के उतरे थे और वहाँ 33 सागर तक 4 गुणस्थान में लटकना पड़ता है, उनके लिए वो दुख रूप है कि सुख रूप है? तो ये पुण्य को भी भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अटक के रह जाएंगे। अब तीर्थंकर प्रकृति भी पुण्य प्रकृति है। अब कोई ऑर्डिनरी जो अन्य केवल ज्ञानी तो एक अंतर्मुहूर्त में 13वां पार करके 14वां पार के मोक्ष हो जा सकते हैं, अभी इनको तो वो तो कुछ सालों तक तो वो तीर्थंकर बने रहना पड़ेगा कि नहीं? कि अच्छा लगता होगा लोग इतने पूजा करेंगे, इतने इंद्र खम्मा खम्मा करेंगे तो अच्छा है ना। अज्ञानी तो ऐसा लगता है मैं तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो कितना अच्छा है ना। जिसको बंध अच्छा लगता है उसको मोक्ष अच्छा नहीं लगता। देखो आगे देखते, देखो अहीं तो एनाथी पण आगळ थई जईने आहा प्रभु द्रव्य ने पर्याय बे वस्तु छे, द्रव्य एटले त्रिकाळी वस्तु। देखो पूरे वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं, जैसे हम कहते हैं इच्छा द्रव्य है, परंतु 6 द्रव्य एक एक द्रव्य में भी, अभी हम जीव की बात करते हैं तो अनंत गुणों का वो जो स्वभाव भाव है और हर समय उसका परिणमन जो पर्याय चल रही है, यहाँ उसको ध्रुव भाव है, उसको स्वभाव भाव को द्रव्य कहा और इसको पर्याय कहा। ये द्रव्य पर्याय मिलकर पूरी अखंड वस्तु होती है, वो कोई ऐसे 2 टुकड़े नहीं है कि द्रव्य है हिमालय में और वो पर्याय है कन्याकुमारी में, ऐसा नहीं है। जितना द्रव्य का क्षेत्र है वही पर्याय का क्षेत्र है, परंतु यहाँ हम उसको अपने ज्ञान में उसको ले लेना है, प्रतीति में लेना है। तो कहते द्रव्य ने पर्याय बे वस्तु छे, बे वस्तु ने जो भिन्न द्रव्य नहीं है और न ही उसके पृथकत्व ने क्षेत्र की अपेक्षा भिन्नता है। द्रव्य एटले त्रिकाणी वस्तु एटले आ शुद्ध भाव यानी वो स्वभाव भाव, अने पर्याय बे चीज में पर्याय ने व्यवहार नहीं कहूं, क्योंकि वो भेद किया ना इसलिए व्यवहार नहीं कहा। पर्याय का एक अर्थ होता है भेद करना, ये भी उसको पर्याय कहेंगे। अहीं अने त्रिकाण ने निश्चय कहूं, पर्याय ने व्यवहार नहीं कहीने परद्रव्य कहूं। देखो ये अपेक्षावश कह दिया है तो कहे छे टीकाकारे परद्रव्य क्यांथी काढ्यू, पाठमां तो एम नथी, जीवादि बहिस्तत्वम एटलू छे। तो 50मी गाथामां परद्रव्य कुंदकुंदाचार्य कह्युं छे, 50मी गाथामां। अब यहाँ 38वी गाथा चल रही अपनी, ए टीकाकार पण पोतानी शैली करे छे, परदव्यम परसहावम इदि हेयम, एवा 3 बोल छे। 50 गाथा जो पर्याय छे परद्रव्य छे, निकालो 50मा गाथा है क्या उसके अंदर? गाथा 50 है, 301, हाँ 298 पर। ये नीचे अन्वयार्थ है उसको देखो, पूर्वोक्त सर्व भावो पर स्वभावो छे परद्रव्य छे तेथी है ये छे अंतस्तत्व एवं स्वद्रव्य आत्मा उपादेय छे। ये बात आई ना वहां, उन्होंने जाके स्वयं बताया है, इसलिए यहाँ उन्होंने ले लिया। वो तो आएगी जब गाथा, तब हम उसको विस्तार से देखेंगे वहां पर। अभी अपने पृष्ठ पर आना, पेज नंबर 6 पर। ये जो 50 गाथा जो लिखा ना उन्होंने, वहां से पढ़ेंगे। पर्याय छे, परद्रव्य छे, परभाव छे अने हेय छे, त्रण बोल। हेय का अर्थ है वो आदरणीय नहीं, अपने को पर्याय जितना मानना योग्य नहीं है। हम तो त्रिकाली ध्रुव भाव जो है, स्वभाव भाव, शुद्ध भाव जो है, वो आदरणीय है, उसके सन्मुख होकर उसी को जानते रहना योग्य है। संसार आड़े इन्हें निवृत्ति मळे नहीं, एमा पैसा कहीं करोड़ बे करोड़ पांच करोड़ थाय तो आहा हा, एमा गूंचवाई गयो प्रभु। एनी संख्या करता अनंत गुणा तारा मा धर्म, एटले गुण छे, धर्म है ने गुण है। क्या कहना चाहते हैं? ये बाहर जो करोड़ अब जो उसकी महिमा आती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, जिसको ये संख्या का आकर्षण है ना, रुपया का करोड़ है हमारे पास, 5 करोड़ हमें 10 करोड़ है, पैसे का आकर्षण है ना गिनने का, हाँ, तो उसको तो ये करना नियोग वगैरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो असंख्यात और अनंतों में है। मैं कहती हूँ हम तो अनंतों में और असंख्यातों में डील करते हैं, हम करोड़ों अब्जों में डील नहीं करते। क्या करें, क्योंकि पैसे की जैसी महत्ता आती है उसको, धन संपत्ति की जैसी महिमा आती है, ऐसी अपने स्वभाव की कभी उसको महिमा ही नहीं आई। अरे वो जड़ को अपने को नहीं जान रहा है, उसको जानने वाले तो हम हैं। दुनिया की सारी चीजों का निर्णय करने वाले तो हम खुद हैं, पर इसको अपनी महिमा नहीं आ रही है निर्णय करने वाले की, और पर चीज की इसकी महिमा इतनी, उसकी महिमा, इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। क्या कहते, देखो एमा गुंचवाई गयो, यहाँ लिखा ना, एनी संख्या करता अनंत गुणा तारा मा धर्म, एटले गुण छे। जेने अहीं शुद्ध भाव कहे छे ए द्रव्य स्वभाव, एना गुणनी संख्यानो पार नथी, अंत नथी के आ छेल्लो है ना। ये पहला हम दूसरा नाम देंगे तो ये ऐसा अंत नहीं, उसको अनंत 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 अनंत, तो ये अनंत अनंत ना अनंत नो आ छेल्लो गुण छे, ए भी बात आत्मा मा चेज नहीं। हमने उसको रविवार के दिन उसको पढ़ा था, एक एक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में गुण कितने हैं, तो अनंत, वो अनंत को गिनाएंगे नहीं, हाँ, जीव अनंत, पुद्गल अनंत, अनंत तीन समय, तीन काल के समय, हाँ, फिर उससे अनंत गुणा आकाश द्रव्य के प्रदेश, उससे अनंत गुणा प्रत्येक द्रव्य में गुण, कौन से द्रव्य में, सभी परमाणु में भी, आकाश में भी, काल में भी, सभी द्रव्य में अपने अपने अनंत गुण। अभी उसमें अनंत वो क्या क्या है वो बातें आगे, वो केवली क्या जानते हैं, या हम हमारे में गुण कितने हैं, ये इसकी बात चल रही है। एवी बात आत्मा मा चेज नहीं, कौन सी कि ये लास्ट है, ऐसा उसमें कोई अंत नहीं होगा। आत्मा मा गुणनी एटली संख्या छे, 7 नंबर का पेज। पर्याय थी भिन्न द्रव्य अंदर छे, पर्याय अंतर्मुख जोए छे तो पाताल इना हाथ मा आवे छे, यानी वो द्रव्य स्वभाव को जान सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। पण ये पाताल पूर्व पाताल होतो नथी, छत्ता पत्तो लागी जाए छे, शू कीधु, यानी उसको मर्यादा नहीं है, फिर भी उसका अनुभव हो जाता है। संवर निजरानी मोक्ष मार्गनी पोतानी पर्याय जे छे, ए मोक्ष मार्गनी पर्याय ने पण अहीं परद्रव्य कीधी छे, केम के ए पर्याय छे, ए पर्याय छे तेनी मुदत एक समयनी छे, अने भगवान अंदर तिकाणी आनंदनो कंद छे। संवर निर्जराज उसको कही, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं, समय दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वो पर्याय है ना, उसकी मर्यादा है कि नहीं, एक समय की है, और मैं त्रिकाली हूँ, त्रिकाली यानी तीन काल के जितने समय मैं भी उतना मेरा अस्तित्व है, उसमें कोई अंतर नहीं है।
पहले तक पर्याय होगी, साधन भी है, ऊपर भी है, लेकिन वो जो संसार निकले
तभी तक उसको संसारी कहेंगे, पर कर्म रहित होने पर उसी को मुक्त कहेंगे। लास्ट लास्ट भी वो तो डेढ़ गुना निगुणित समय प्रबंध है, डोंट वरी, बहुत होता है बड़ा। वहां तक कर्म है, चार कर्म है ना बाकी, अर्यंतों को चार कर्म थे, अंतिम समय तक वो फिर रहे थे, अपनी सुबह की भाषा में उसका परिशातन हो रहा था चौदवे गुणस्थान तेजस कारवाण और औदारिक का, है ना, वो छूट रहे थे, ग्रहण रुक गया था, तो छूटते छूटते सभी छूट गए और जीव, प्योर जीव ऊपर चला गया और सिद्धालय में जाके विराजमान हुआ। अभी तक शरीर के साथ और वो कर्म के साथ, पुद्गल के साथ था, अनादि से था, बंधा हुआ था, अभी पूरा छूट गया। हाँ, 85 प्रकृति जाती है।
देखो बात सुनो सुनो, ऐसा मत समझना कि चौदहवें गुणस्थान के अंत समय में लास्ट परमाणु गया, ऐसा नहीं होता है। एट अ टाइम अनंत परमाणु एक समय प्रबद्ध जाते हैं, और आज तक जितने गए हैं ना उनके, उससे भी
असंख्यात गुणे, असंख्यात
गुणा, ये लास्ट परमाणु, लास्ट संख्या जितनी है
वो 85 प्रकृति भी 72 और 13 इस तरह से होती। हाँ, उपांत समय और अंत समय दो समय में जाते हैं, बरोबर है। हाँ देखो, ये 7 नंबर के पृष्ठ पर, तो ये मोक्ष मार्ग पर्याय है ना, इसलिए उसको परद्रव्य कहा। ये दूसरा पैराग्राफ अभी पढ़ेंगे। सिद्धांत मा तो एवो एक शब्द आयो छे के निरंतर वर्तमान, हाँ, त्रिकाली वस्तु निरंतर वर्तमान यानी निरंतर रहने वाली कायम है, भविष्य में रहेशे एम नहीं, अहीं तो निरंतर वर्तमान छे, निरंतर अंतर पड़े बिना वर्तमान कायम है। पाछळ विशेष कथन करे तो त्रिकाली पण कहेवामां आवे छे। आ देह में भगवान आत्मा निरंतर वर्तमान, निरंतर ध्रुव, निरंतर वर्तमान ध्रुव है, कायम है। अशुद्ध भाव यानी किसी भी पर्याय के पीछे पूरे के पूरा, जो स्वामी जी ने बहुत बार कहा एक समय में त्रिकाली है, एक समय में त्रिकाली है ना, वो तो पूरा स्वभाव भाव प्रत्येक समय के प्रत्येक पर्याय के पीछे है। यानी अपने को पर्याय जितना मान लिया है, परंतु उसके पीछे ने वो खरखर मैं हूं, हमने पर्याय को मैं मान लिया है, भूल इतनी हो रही है उसकी। ए वर्तमान मां शुद्ध भाव छे, वर्तमान मां शुद्ध भाव ने वो त्रिकाली भाव को शुद्ध भाव कहा है, पर्याय को नहीं। त्रिकाल रहे छे माटे शुद्ध भाव छे एम नहीं, पण नहीं तो वर्तमान शुद्ध भाव छे, वर्तमान में जो ध्रुव छे। हाँ, क्या कहते हैं, वो तीन काल को और देखना नहीं, वर्तमान में परिपूर्ण है, तीन काल के समय मिलकर वो परिपूर्ण है ऐसा मत ले लो, एक समय में वो परिपूर्ण है, फिर भी हर समय इतना ही परिपूर्ण रहता है, इसलिए उसको त्रिकाली भी कहते हैं। इसलिए कहा ना, ये निरंतर वर्तमान है, वर्तमान में परिपूर्ण है। हम क्या कहते हैं, तीन काल के समय मिलकर जो पूरा फैला है उसकी अपेक्षा से उसको हर समय परिपूर्ण है। अहीं कहे छे के जीवादि 7 तत्वों नो समूह एना घरनों नथी कहूं, 50मी गाथा मां अने समयसार मां पण आवे छे, समयसार मां कलश मां आवे छे, परद्रव्यम समग्रम हेयम, ए बधी पर्यायादि परद्रव्य छे, एक कोर राम अने एक कोर गाम, राम एने आत्मा राम और बाकी सब गाम एने पूरे रागादि वर्णादि सब उसमें डाल दो। हमने बोला ना तराजू के एक पलड़े में वो स्वभाव भाव को रखो और दूसरी पर्याय में ये सारी पर्यायों को रखो, रागादि को रखो, अरिहंत सिद्ध भगवान गुरु सब उसमें रखो, ये सब गाम में आ जाएगा, पर में आ जाएगा। तो एक को राम ने एक को गाम, एक समय ने पर्याय ने राम कहिए तो प्रभु त्रिकाणी ने आंखों गाम कही, अलग अपेक्षा दी उन्होंने। पूर्णानंदनो नाथ यानी वो परिपूर्ण है, सब कुछ है, इसलिए उसको गाम कह दिया। जेना गुणनी संख्यानो पार नथी, अहीं तो अबज ने अबज कमाणो એ તો હવે હમણાં અબજ સુધી કહે છે, અમારા વખતમાં તો અબજ પછી પણ લેતા. ખર્વ નિખર્વ મહાપદ્મ એવી સંખ્યા હતી, જેમ 100 કરોડના અબજ એવા 100 અબજના ખર્વ અને 100 ખર્વના નિખર્વ એવા 18 બોલ હતા અમારા વખતમાં. અત્યારે તો અબજ સુધી છે. આ તો 70 વર્ષ 80 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. 9-10 વર્ષની ઉંમરમાં ભણ્યા હતા. એ સબ વો સ્કૂલો મેં ભણાતે થે. હોતે ના 1 કરોડ, ફિર અબજ, ફિર ખર્વ નિખર્વ, વો સબ આતે હતે. અત્યારે તો 90 થયા. એ 90 સાલ કી ઉંમર મેં ભી ઉનકી ક્યા પ્રવચન કી, વો તો આપને દેખ્યું હોય તો ડીવીડી હૈ ના નૈરોબી વાલી. એસા લગતા હૈ યહાં આવાજ ઇતની બુલંદ હૈ ઉસમે ભી ઉનકી 91 ઇયર્સ મેં પ્રવચન દિયા થા વહાં પર. તો એ સંખ્યાની પણ હદ છે, સમજાણું કાંઈ. અબજ પછી ખર્વ નિખર્વ આદિ 18 છે, તો પણ એની મર્યાદા હદ છે. આત્માના કેમકે વો સબ સંખ્યાત હૈ ના, સંખ્યાત કે બાદ તો અસંખ્યાત તો હમારા ભી, હમ તો ઉસકો કાઉન્ટ ભી નહીં કરેંગે. હમ જો જાનતે વો તો આગમ સે જાનતે હૈ. યહાં તો અનંતો કી બાત હૈ. દેખો સંખ્યાની પણ હદ છે, એ જો હૈ નીચે મર્યાદા હદ છે. આત્માના ગુણની જે સંખ્યા છે એની તો મર્યાદાની હદ જ નથી. એટલી સંખ્યાનું પૂર, ચૈતન્યના નૂરના તેજનું પૂર આ અતિન્દ્રિય આનંદના સાગરના જળથી ભર્યો પડ્યો છે પ્રભુ. આહા હા, એ શુદ્ધ ભાવની અપેક્ષાથી સંવર નિજરા મોક્ષને પણ પરદ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. દેખો અપેક્ષા સમજના બરાબર હો. અરે રે, સત્યવાદ કાને પડે નહીં, એ સત્યવાદ ક્યારે સમજે? અને જબ સુનેગા હી નહીં તો સમજેગા કબ? ક્યુંકી સુનને સે સભી બાતે સમજ મેં નહીં, ક્યુંકી બેસિક માલુમ નહીં, ઓર યહ હાયર લેવલ કી બાત તો ઓર લગતા હૈ ક્યા બોલ રહે, ક્યા કુછ નહીં સમજ મેં આતા હૈ. તો કહેતે સત્યવાદ ક્યારે સમજશે? કાને પડે નહીં તો સમજશે ક્યારે? મનુષ્યપણું ચાલ્યું જાય.
ક્યા બતાના ચાહતે હૈ કે રોજ સ્વાધ્યાય મેં આના.
હા હા, તો સુનકર સમજ મેં ભી આ જાયેગી બાત. એસે હૈ ના, જો પહેલી વાર સુનતે તો એ લગતા હૈ કુછ નહીં સમજે, કુછ નહીં સમજે તો એસા સમજને ક્યો નહીં સમજતા, મેં ક્યો નહીં સમજ સકતા. જબ મેડિકલ મેં યા ઇન્જિનિયરિંગ મેં યા સ્કૂલ મેં એડમિશન લી થી તો સબ જાનને વાલા વહાં ગયા થા કે નહીં જાનને વાલા ગયા થા? તો અમારા બચ્ચે કો સ્કૂલ મેં જાનતે તો કોઈ નહીં, ડાલા તો કુછ નહીં સમજ રહા થા, બાદ મેં વો પઢકર હો ગયા ના સ્યાના. મેડિકલ મેં ગયે તભી ક્યા થા, કુછ માલુમ નહીં થા, વહાં જાકે સીખે. એસે યે બાત ભી પહેલે તો પહેલે એસે લગતા કે સબ નહીં બાત હૈ, નહીં તો હૈ પરંતુ યહી સીખને જૈસી હૈ, ઇસમેં હમારા ભવભવ કા કલ્યાણ હોને વાલા હૈ. ભાઈ, સમય સમય મિનિટ દિવસ જાય છે, એ જે મૃત્યુનો સમય છે તો નક્કી છે. ક્યાં કહા, હમ કીધે હમ ઇતને બડે, હમ ઇતને બડે, એ તો મૃત્યુ કે નજીક આ જાય. જેટલા દિવસ જાય છે મૃત્યુની સમીપ જાય છે. દેહને છૂટવાનો નિશ્ચિત સમય છે. દેખો ક્યાં કહેતે હૈ, એ તો સમય તો બઢને વાલા તો નહીં કિસી હાલ મેં, કૈસે ભી પરિણામ કરે કિતને ભી, ફિર ભી જો આયુ બાંધ કરીએ બાંધી હમને પૂર્વ ભાવ મેં, ઇસ ભાવ મેં ઉસમેં એક સમય કી ભી વૃદ્ધિ હોને વાલી નહીં હૈ. તો કહેતે કે દેહને છૂટવાનો નિશ્ચિત સમય છે. અબ વો કદલી ઘાસ સે જાયેગા કે પૂરા આયુ ભોગ કર જાયેગા, વો ભી નિશ્ચિત હૈ, વો નિશ્ચિત હૈ. વો નિમિત્ત આયે ઇસલિયે ગયા ઓર નહીં આતા તો નહીં જાતા, એસા કુછ નહીં હૈ. જીસ નિમિત્ત સે જીસ ક્ષેત્ર મેં જીસ પોઈન્ટ પર જીસ સમય મેં વો મરના હૈ, જો કુછ હોના હૈ, વો સબ કુછ નિશ્ચિત હૈ. ઉસમેં જીનેન્દ્ર ભી હેરફેર નહીં કરેંગે, કોઈ ઇન્દ્ર આયે તો ભી નહીં હેરફેર હો જાયેગા. એ સબ કુછ નિશ્ચિત હૈ, તો ઉસકા વિકલ્પ છોડકર કરને જૈસા યે જો હૈ યે કરના હૈ. પહેલે ક્યા કહેતે હૈ કે દેહને છૂટવાનો નિશ્ચિત સમય છે, એમાં કાંઈ આગળ પાછળ નથી થતું. તો એ સમયમાં જેટલા દિવસ જાય છે એ દેહ છૂટવાની સમીપમાં જાય છે. એમાં જો આત્મા પરથી ભિન્ન છે એવું સમ્યદર્શન ન કર્યું, હા તો પ્રભુ તારા ભવનો અંત ક્યાંથી આવશે? અને પહેલાં તો હજી શ્રદ્ધાના ઠેકાણા નથી, સમય દર્શન નહીં આવી તો. તો દયાદાન વ્રતભક્તિ કરતાં કરતાં કલ્યાણ થશે એ તો મિથ્યાત્વ છે, એ માન્યતા મિથ્યાત્વ હૈ. વો કરના મિથ્યાત્વ નહીં હૈ, ઉસસે મેરા કલ્યાણ હોગા, એ માન્યતા મિથ્યાત્વ હૈ. अब यही रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो। वीरेश्वर।